أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد أما بعد محترم ناظرین حدیث قصہ کے تربیتی نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے آج ہمارے اس حوالے سے تیسری نشست ہے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ بھی اس یمنی چادر کے اندر تشریف لائیں انہوں نے بھی آتے ہی سلام کیا امام علی علیہ السلام نے اس طرح سلام کیا السلام علیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام امام علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدے اور منصب کا ذکر کر کے سلام کر رہے ہیں آپ کے پاس رسالت ہے آپ رسالت پر فائز ہیں ان کے عہدے اور منصب کا ذکر کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے جواب میں امام علی علیہ السلام کے عہدوں اور منصبوں کو بیان کیا ہے کیا پیارا اور خوبصورت جواب دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی اب یہ بھائی یہ منصب تھا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ہے کہ نسبی بھائی نہیں تھے ایک والد کی اولاد نہیں تھے ایک منصب تھا جب عقد اخوت قائم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت قائم کیا آخر میں علی علیہ السلام تنہا رہ گئے تو پریشان یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا میں اکیلا رہ گیا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے بھائی بنو ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ تمہیں وہی منزلت حاصل ہو جو جناب ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی اسی منزلت پر فائز ہو جاؤ تو یہ اخوت یہ بھائی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اس عقد اخوت کی طرف اشارہ ہے اس میں اپنائیت پائی جاتی ہے اخی میرے بھائی وصی میرے بعد میری وصیتوں کو پورا کرنے والے وخلیفتی میرے بعد میرے مقام پر فائز ہونے والے میرے جانشین یہ اس دنیاوی مناسب کا تذکرہ ہوا آخرت کا بھی ذکر کیا کہ آخرت میں علی علیہ السلام کس درجے پر فائز ہوں گے فرمایا وَصَاحِبَ لِوَائِ اور اے میرے علم بردار بعض نے یہاں پر لوا سے مراد لواء الحمد لیا ہے جو روز قیامت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا جائے گا بہرحال امام علی علیہ السلام کے عہدوں اور منصبوں کا تذکرہ ہوا کہ علی علیہ السلام کن مناصب پر فائز ہیں علی علیہ السلام نے جیسا سلام کیا تھا ویسا ہی ان کو جواب دیا گیا اندر تشریف لائے آپ بھی پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی باری آتی ہے اب دیکھیں یہ داماد تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام علی علیہ السلام بھائی تھے ان تمام نسبتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ جو اہم بات ہے حدیث قصہ کی وہ یہی ہے کہ رشتوں کو ہمیشہ اظہار محبت کے ذریعے سے مضبوط تر بناؤ یہ محبت کا اظہار رشتوں میں تازگی پیدا کرتا ہے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اگر آدمی لا تعلقی کا اظہار کرے لا تعلق ہی رہے تو آہستہ آہستہ یہ دوریاں بڑھتی ہیں اور رشتے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں آخر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود تشریف لاتی ہیں अब एक बेटी का एक वालिद से खिताब है, तो आकर सलाम करती हैं, अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा जान आप पर सलाम। नाम नहीं ले रही, निस्बत का तज़किरा कर रही हैं कि पिदरे गिरामी, वालिद बुज़ुर्गवार, बाबा जान आप पर सलाम, और फिर उनके मनसब का तज़किरा फरमा रही हैं, या रसूल अल्लाह, आप न सिर्फ मेरे वालिद हैं बल्कि आप अल्लाह के रसूल हैं। पहले अपनी रिश्तेदारी का बयान किया और फिर उनके मनसब का बयान किया जो अल्लाह की तरफ से उनको हासिल है। इजाज़त लेना चाहिए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह जवाब दिया। मैं कहूँगा कि आप जब भी हदीस किसाब पढ़ें तो इन अल्फाज पे दिक्कत ज़रूर करें, कितनी नूरानियत है इन अल्फाज में, कितने असरार और हकायक पोशीदा हैं लफ्ज़ लफ्ज़ जुमले जुमले में, किस तरह सलाम किया है, किन अल्फाज का इंतखाब किया है। ये लफ्ज़ वैसे तो एक हल्की सी चीज़ है, लफ्ज़ ज़बान पे आने वाले अल्फाज, लेकिन तासीर के लिहाज से बहुत बड़ी चीज़ है। ये अल्फाज ही हैं जो किसी को किसी के करीब करते हैं या दूर कर देते हैं। इसलिए रिवायात में ताकीद की गई है कि पहले सोचो फिर बोलो, इस ज़बान की हरकत को मामूली काम ना समझो। इन अल्फाज की दिक्कत और इनकी ज़राफ़त और इनमें पाई जाने वाली लताफत इतनी गहरी है कि जितना आदमी इसमें सोचे उतना ही मानवी तौर पर महजूज होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दे रहे हैं, वअलैकिस्सलामो या बिनती, इन्होंने अबता कहा था बाबा जान, रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि ए मेरी दुख्तर, मेरी बेटी, रिश्ते का तज़किरा किया और फिर फरमा वया बवअती, और ए मेरे जिगर के टुकड़े। और बवअती में बाज़ मुफस्सिरीन जैसा कि ख़ुद इस रिवायत में कि फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी की तफसीर करते हैं, तो ये बज़अतु मिन्नी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी निस्बत का बयान नहीं कर रहे बल्कि उनके मानवी मनसब को बयान कर रहे हैं कि अगर मैं रिसालत के ओहदे पर फ़ाइज हूँ तो फ़ातिमा इस रिसालत में सहीम है, वो बज़अतु मिन्नी है। इसीलिए आइमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर हम अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत हैं तो फ़ातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, फ़ातिमा हम सब पर अल्लाह की हुज्जत हैं, ने उनके मनसब का बयान हो रहा है। जिस तरह सैयदा ने पहले अपने जिस्मानी रिश्ते को बयान करके सलाम किया फिर मनसब को बयान किया, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में भी इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए उसी तरह जवाब दे रहे हैं। सलाम और जवाब में तनासुब होना चाहिए, मुनासिबत होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि सलाम किसी तरह का, जवाब किसी तरह का। सलाम गर्म जोशी से हो, जवाब बेरुखी से मिले तो फिर इसे अपनाइयत का इजहार नहीं होगा, इसे वो मोहब्बत पैदा नहीं होगी जो इस्लाम चाहता है। इस्लाम के ज़रिए से जो मोहब्बत पैदा हो उसका असर तभी होगा जब इनमें मुनासिबत पाई जाती होगी और ये एक जैसे होंगे। अब ये पंजतन पाक अलैहिस्सलाम यहाँ जमा हो गए। मैंने पहले भी इशारा किया था कि यहाँ हमारे लिए जो तरबियती नुकात हैं वो ये कि एक घर का तज़किरा हो रहा है। इसमें कितने रिश्ते हैं, बाप और बेटी का रिश्ता है, इसमें नाना और नवासों का रिश्ता है, इसमें मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ है, ये तमाम रिश्ते इस हदीस किस्सा में मौजूद हैं। इसकी अगर इतनी फजीलत बयान की जा रही है ताकि इन रिश्तों से दर्स लो और अपने रिश्तों में वैसी अपनाइयत पैदा करो, वैसा मोहब्बत, वैसा एहतराम। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस है जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है, हम बाहर बहुत अच्छे बन जाते हैं, जिनके साथ हमने चंद मिनट गुजारने हैं, दफ्तर में चंद घंटे गुजारने हैं, उनके साथ हमारा रवैया बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर में पहुंचते ही हमारा मिजाज बदल जाता है। हालांकि होना इसके बिल्कुल बरखिलाफ चाहिए। अच्छाई करनी है, घर वालों के साथ अच्छाई करो। अच्छा रवैया पहले घर वालों के लिए होना चाहिए, अच्छा अखलाक पहले घर वालों के लिए होना चाहिए। चंद मिनट बैठकर किसी के साथ मुस्कुराकर बात कर देना, अच्छे अखलाक से पेश आना कोई हुनर नहीं है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आप जिनके साथ रहते हैं 24 घंटे आपको उनके साथ गुजारने होते हैं, वहाँ अगर आप अच्छे हैं तो वाकई आप अच्छे हैं। घर वालों के लिए जो अच्छा है वो वाकई अच्छा है, इसलिए फरमाया कि तुम्हें से बेहतरीन वही है जो घर वालों के लिए अच्छा होगा, जिनके साथ वो 24 घंटे गुजार रहा है उस उनके साथ उसका अखलाक अच्छा होगा तो बाहर दोस्तों के साथ दूसरे नस्बतों से भी उसका अखलाक अच्छा होगा। लेकिन बुनियाद घर वाले हैं, वो ज़्यादा हकदार हैं। आज हमारे लिए हर एक के लिए वक्त होता है, अगर टाइम नहीं होता हमारे पास तो अपने घर वालों के लिए। अजीब बात यह है, मैं मिसाल देता हूँ, इसी हदीस किस्सा के तस्करे में ही हम मिसाल दे देते हैं। ये मोबाइल, इसका एक काम यही था, बल्कि इसको बनाया ही इसलिए गया था कि दूर वालों को नज़दीक किया जा सके, दूर वालों से बात हो सके। लेकिन आजकल हम ऐसा कर रहे हैं कि इस मोबाइल का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा हो गया है कि दूर वाले तो नज़दीक आ गए हैं लेकिन जो असली नज़दीक हैं, जिनको हमारे नज़दीक होना चाहिए, उनसे हम दूर होते चले जा रहे हैं। एक छत के नीचे रहते हैं दो भाई, लेकिन वो अपनाइयत नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। एक घर में रहने वाले हैं लेकिन इन चीज़ों में हम इतना उलझ के रह गए हैं, अगर चार घर के अफराद एक छत के नीचे बैठे हुए हैं तो चारों बाहर उनका राबिता है, आपस में उनका इतना राबिता नहीं है। जबकि हदीस किस्सा की नूरानी तालीमात ये हैं कि पहले घर वाले, हर नेक काम में, हर नेकी में सबसे पहले जो जितना ज़्यादा नज़दीक है, जो जितना ज़्यादा करीब है, उसका हक ज़्यादा बनता है। हदीस किस्सा का असली पैगाम यही है कि पहले अपने घर वाले। मन दखल बैती, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और जो मेरे घर में दाखिल हो जाए, इस तरह की दुआ दर हकीकत ये औलवियत बता रही है कि हिफ्ज़ मरातिब रखना है हमने, अखलाक में, मोहब्बत में, एहतराम में, अच्छे सलूक में, इन मरातिब का ख्याल करना है। पहले घर वाले, पहले खुद घर वाले, रिश्तेदार और फिर दूसरे दोस्त अहबाब, उनकी बारी बाद में आती है। ये पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की नूरानी तालीमात यही हैं घर वालों के हवाले से। बहरहाल इस हदीस किस्सा में और भी बहुत सारे नूरानी नुकात पाए जाते हैं जिनकी तरफ हम आइंदा इशारा करेंगे। दुआ है हमारी कि खालिक़े कायनात हमें इस नूरानी हदीस पर और इनके नूरानी पैगामात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।